दृश्य नहीं है, वो तो समदर्शी है। जैसे सूर्य समदर्शी है, सबको समान रूप में प्रकाश देते हैं, किंतु जो उल्लू है, जो अपना आंख बंद किए हुए हैं, उनको प्रकाश कहां से मिले? सूर्य तो दे रहे हैं अपना प्रकाश, और उल्लू आंख बंद के कहता है ये दिन है कि रात है उसको पता नहीं, तो ये पक्षपात हुआ यदि अपना ही बंद कर रखे हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है जब उदित होते हैं, और कोई अपने को घर में बंद करके अंधकार में रहे तो प्रकाश कहां से पाएगा? वो यदि कहे कि हमको प्रकाश नहीं मिल रहा है, सूर्य भेदभाव कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरसती है, जिस रूप में जो योग्य है उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। अरे और की भक्ति की तो बात छोड़ दो, तस्मात वैरानुबंधे न भय न, और क्या स्नेह न, कामे न निर्भयन भय इत्यादि। यदि कोई भक्ति से भगवान का भजन करे, भय से करे, काम से करे, स्नेह से करे, चित्त भगवान में आविष्ट कर दे, आवेश मैंने क्या आविष्ट कर दे, आविष्ट मैंने क्या, आविष्ट का एक उदाहरण ऐसे समझ लीजिए सरल सहज, हम लोग सुन रहे हैं आवेश किसी का नहीं है, बहुत कम लोगों का आवेश इसमें है। एक मैंने कोई हमारे पास में वो था जिसमें सांप रहता है, विषधर सर, और लेकर के हमने इधर में छोड़ दिया, क्या करेंगे सब लोग? ऐसा आवेश हो जाएगा जो सांप जिधर जिधर जाएगा उधर ही नजर जाती चली जाएगी, सांप इधर से जाएगा तो सब लोगों की नजर कहां रहेगी? उठ करके खड़े होकर के पहले तो भागेंगे सांप को देख करके जिधर सांप नहीं जा रहा, और उसी में आविष्ट हो जाएंगे और रोमांच हो जाएगा, भीतर में भय हो जाएगा, ऐसा उसमें ये एक मिनट भी इधर उधर नजर नहीं जाएगी, चित्त नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, सब उसमें आविष्ट हो जाएगा, यह है भय। इसलिए भय के द्वारा बैर के द्वारा बैरानुबंध है ना, चित्त सहज रूप में वो आविष्ट हो जाता है। ऐसे यदि भक्ति के द्वारा कोई चित्त भगवान में आविष्ट करे, स्नेह से करे, निर्भयर माने किसी से बैर नहीं, अतत भक्ति, यह साधारण भक्ति निर्भयर बने, कामे न काम से भी यदि निविष्ट हो जाए, जैसे भी हो कृष्ण में चित्त आविष्ट हो जाए, जैन के उपाये न कृष्ण मनोनिवेश, चित्त को निविष्ट करना चाहिए, आविष्ट होने की चेष्टा करनी चाहिए, होगा नहीं जितना भय में और बैर में जल्दी से स्वाभाविक रूप में हो जाता है, भक्ति में जोर लगाना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। इसके बाद में ऐसा कह करके, ऐसा क्यों कहा, किसी प्रकार से चित्त भगवान में लगना चाहिए, शत्रुता से हो, डर से हो, भय से हो, काम से हो, शत्रुता से हो, पांच या छह प्रकार का उन्होंने बतलाया, छह प्रकार से बतलाया है, उसी को उपमान देकर के फिर बतला रहे हैं, और फिर एक उसमें बतलाया जथा बैरानुबंधे न क्या मतम तन्मयतामियात न तथा भक्ति जोगे नीति में निश्चिता मति, हमारा निश्चित मत है कि जिस प्रकार से बैर से, भय से, शत्रुता से चित्त कृष्ण में आविष्ट हो जाता है, भक्ति के द्वारा नहीं होता है। भक्ति माने यहां पर क्या कहा गया, वैधि भक्ति, वैधि भक्ति कौन सी वैधि भक्ति, जिसमें अभी अनर्थ भरे पड़े हैं, चित्त को ले जाते हैं कृष्ण में और चित्त भागता है उधर, अभी भागवत सुनने के लिए आए तो उसमें नींद आ जाएगी, इस तरह से हम चित्त को ले आते हैं इधर में किंतु चित्त नहीं लगता, यह है वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति है वो जो रुचि के साथ में होती है, लोभमय जो होती है, वो क्या करती है, एक बार रुचि से आरंभ होगी उसमें चित्त आविष्ट हो जाता है, इसलिए वो उसके बाद में आसक्ति और आसक्ति के बाद में भाव हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सौभाग्यवान होने की जरूरत है। गुरु वैष्णव का कि जिस पर कृपा बरसे अहित के रूप में उसके लिए संभव है, इसलिए कहते हैं हमारा निश्चित मत है भैरव अनुबंध के द्वारा जैसे चित्त अविष्ट हो जाता है भगवान में, जैसे शिशुपाल चार भुजा लेकर के जन्मा, चार भुजाएं थी, उसको आकाशवाणी हुई, जिसके जिसको देखने से जिसके दर्शन से दो भुजाएं गिर जाए, दो भुजाएं रह जाए, वही इसको मारेगा। अम्मैया बड़ी चिंतित थी, वो तो शिशु था छोटा, दो चार वर्ष हो गए या थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ कृष्ण उसको दर्शन करने के लिए आए। उनकी बहन का, उनकी बुआ जी का लड़का था, कुंती की बहन थी, उसी का लड़का वसुदेव जी की भगनी। कृष्ण आए उपढौकन उपहार लेकर के बच्चे के लिए, और वहां रख करके बच्चा उसने, बुआ जी ने बच्चा इनकी गोद में दे दिया। गोद में देने के पहले ज्यों ही कृष्ण ने उसके तरफ में देखा, वह उसकी दो भुजा गिर गई। अब वो बहन, वो बुआ जी रोने लगी, ये तुम्हारे हाथ से मरेगा। कहे मैं नहीं मरता, मैं क्यों मारूंगा। उन्होंने कहा जी तुम प्रतिज्ञा करके संकल्प करके कहो जे मैं इसको नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा जी ऐसा तो नहीं कहता, किंतु 100 तक कोई अपराध करेगा तो नहीं मारूंगा, इसके बाद में हम विचार करेंगे। अच्छा तो 100 कैसे, आपको तो अपमान गाली नहीं देगा। अच्छा ठीक। अब वो जब होश आया तब उसने सुना कि हमको इसी के हाथ से मरना है, तो क्यों नहीं मैं पहले ही उसको मारूंगा। अब इसकी भावना आई, बस शत्रुता कर लिया एकदम जन्म से। पानी पिता तो उनको कोसता हुआ गाली देता हुआ, एकदम उसकी दृढ़ भावना होगी। अब वो ऐसा हो गया उसमें मरने की चिंता, उसमें जो उसमें आविष्ट हो गया, और आविष्ट होने से क्या हुआ, उसके जितने पूर्व जन्म के कर्म और जो कुछ था वो सब कुछ निर्मल हो गया आविष्ट होने से। गाली देना भी भूल गया सब कुछ, किसी वैष्णव की निंदा इत्यादि करना ये सब बातें भी भूल गया, कृष्ण से बैर के हो जैसे। ये बैर क्या चीज है, परमार्थिक तो है नहीं, है क्या चीज है? परमार्थिक किसको कहते हैं, इस चीज को समझना चाहिए। यदि कोई हम भीतर में कोई देश भाव लेकर और किसी भगवत संबंधी वस्तु का अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो ये परमार्थिक हानि होगी। और ऐसे साधारणों के प्रति जो कर्म है, कोई निंदा गाली चुगली, ये सब साधारण लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये परमार्थिक हानि नहीं होगी। अजामिल ने जो कार्य किए थे वो क्या था, लौकिक कार्य थे, इसलिए उसका अपराध नहीं हुआ, नहीं हुआ उसका अपराध। अपराध किसका होगा, यदि भगवत संबंधी हरिनाम है, यदि उसका अनादर करता है, उसका और दूसरे दूसरे देवताओं का नाम एक बराबर समझता है, गुरु जी की अवज्ञा करता है, गुरु जी की अवज्ञा करने से ये भगवत संबंधी है, अपराकृत तत्व है। वैष्णव की निंदा करते हैं, ये अपराकृत तत्व है। इनके संबंध में यदि मजाक में भी यदि कुछ करेगा, यदि अवहेला करेगा, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात, यदि अवज्ञा कुछ कर दिया तो ये अपराध होगा, भक्ति को समूल ही खत्म कर देगा। यदि कोई वैष्णव की हंती मारता है, निंदा करता है, हंती निंदति वही देष्टि, द्वेष करता है, वैष्णव लोग आए उनका भी नंदन नहीं किया, अरे ये क्या है, वो बेकार कर ये सब, उठ करके अभिवादन नहीं किया, और क्रुद्धते जातिनो हर्षम, देख करके क्रोधित होता है, या कोई एक आदमी उनसे द्वेष पूर्वक कुछ कह रहा है तो कहता हाँ हाँ वो ठीक है, बहुत अच्छा, ये वैसे ही व्यक्ति है, ये अनुमोदन भी यदि किया, वैष्णव की निंदा भी सुना और अनुमोदन नहीं करके चुपचाप शांत भी रहा, महाघोर अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये वैष्णव विष्णु संबंधी है, इन्हें खूब सावधान रहना। भूल से तो हम तो भूल देखेंगे ही, अपराकृत वैष्णव का चरित्र हम लोग नहीं समझते, इसलिए हम लोग कभी कभी बाध्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों का संग कभी स्वप्न में भी मत करना, जो गुरु वैष्णव की निंदा करते हैं, नाम की करते हैं, परमार्थ की करते हैं, उनका कभी भी संग मत करना, यदि परमार्थ चाहते हो। इसलिए मारना पीटना तो बहुत, उसे नंजने क्या होगा, ये सब बातें भी नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं होने पर यदि भगवान से बैर है और सब बातें हैं तो चित्त अविष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, किंतु किस रूप में होती है उसको ये दिखला रहे हैं। इसलिए यहां उदाहरण देकर के अब कह रहे हैं कीट पेश कृता रुद्ध कुद्यायन तमोनुस्मरण। एक तैल पोका होता है, तेल पीते हैं, और एक पानी में रहने वाले सड़े गले पानी में रहने वाला बड़ा बड़ा इतना बड़ा कीड़ा होता है, सब जगह जहां पर गंदा होता है वहां पर वो रहते हैं। कांच पोका जो होता है तैल पोका वो बड़ा तेजस्वी होता है, वो उसको पकड़ लेता है अपने से बड़े कीड़े को, जैसे सिंह अपने से बड़े हाथी को पकड़ लेता है वैसे ये कीड़ा उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको अपने माद में ले जाता है, घोंसले में, और उसके रास्ते बंद कर देता है और उसके सामने डराता है, डराते डराते वो डर के मारे उसका चिंतन करे अब मारा अब मार दिया अब मार दिया अब मार दिया, उसका चिंतन करते करते कुछ दिनों में ही उसकी शक्ल बदल जाती है और वैसा ही बन जाता है। इसी तरह से यदि कोई चतुर्भुज विष्णु है भगवत तत्व है, शत्रु भाव से भी यदि चिंतन करता है तो चिंतन करते करते क्या होगा, भरत महाराज यदि चिंतन करते करते अंत में बन गए कैसे, हिरण बन गए। ये मन की कल्पना मत समझना, हरि भजन मन की कल्पना नहीं है। अंत समय में जैसा मन उसका चिंतन करेगा अविष्ट होकर के वैसा ही उसका जन्म होगा, जैसे भरत महाराज जी का हुआ, ठीक ऐसे ही शिशुपाल दंत पक्र इत्यादि ऐसे ही चिंता कर रहे हैं। और इसी रूप में को यदि कोई अविष्ट होकर के करे तो अंत में उसकी वो गति होगी। अष्टकालीय जो लीला है क्या चीज है, बहुत उन्नत स्तर पर है। ऐसे ही अविष्ट होकर के दिन रात ख्याल नहीं, जैव धर्म जरा उठा करके देखो, पहले ही चैप्टर में सवेरे का समय है, बाबा जी हरिनाम कर रहे हैं, कोई प्रेमदास बाबा जी ना क्या ना हरिनाम करे, हरे कृष्ण हरे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। पीछे एक बैठे थे, उनसे कहा जी से, अरे रमण मंजरी, ये बंदरी जो कखटी बंदरी बूढ़ी जो खिलखिला रही है इसको बंद करो, और राधा कृष्ण के सेवा में शयन कर रहे हैं अभी सवेरे, ये व्याख्यात कर रहे हैं, उनको चुपचाप जल्दी से बंद करो। बाबा जी देख रहे हैं कि अभी सवेरा हो गया है किंतु लीला चिंतन क्या कर रहे हैं, कृष्ण लीला का, निशांत लीला का, ऐसे आविष्ट हो गए हैं, न तो वहां पर बंदरी है न तो रमण मंजरी है न तो वृंदावन है, किंतु देख रहे हैं ये वृंदावन है, देख रहे हैं कि ये रमण मंजरी बैठी हुई है और उनको आदेश दे रहे हैं। ये किस चीज का फल है, आवेश। महाप्रभु जी इसी आवेश के लिए कहें, भजन राज्य में यदि ऐसा आवेश नहीं हुआ नाम लेते समय, भगवान के तरफ में भक्ति में आवेश यदि नहीं हुआ, ये तब तक वैधि भक्ति है, ये इतनी दुर्बल है कि वहां तक ब्रज तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए लोभमयी जो श्रद्धा और उससे उत्पन्न होने वाले जो श्रद्धा निष्ठा और इसके बाद में जो रुचि होती है, उसमें निष्ठा का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो एकदम रुचि से उत्पन्न होती है। इसी को ये दिखला रहे हैं, ऐसी उसमें आवेश होना चाहिए जो लोभ होने के बाद में होता है, चित्त कहीं नहीं जाए। कोई समय अवसर नहीं है जो दूसरे वैष्णव की निंदा करेगा, समय बेकार का जाएगा, ऐसे महापुरुषों के लिए नियम नहीं है। ये 1 लाख करें कि 2 लाख करें कि 10 लाख करें कि 5 लाख करें कि 1 नाम करें, महाप्रभु जी के अपने लिए नियम था, दिन रात 24 घंटा में आविष्ट रहते थे। मैं श्रीमती राधिका हूं और उसी में आविष्ट रह करके विभिन्न रूपों में ऐसे आविष्ट हो जाए, लंबे 10 हाथ हो जाते और कभी कुर्माकृति हो जाते, उस समय संख्या लेकर के माला करते थे, रूप गौर स्वामी ऐसे आविष्ट हो जाते। इन महापुरुषों के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, वो नियम से निरंकुश है, नियम है हम लोगों के लिए।
जब तक ये अवस्था आसक्ति अंततः नहीं आती, भाव अवस्था नहीं आता है, तब तक ये नियम जरूर करना चाहिए। इसलिए महापुरुष ऐसे जो हैं, जैसे नारद जी हैं, ऐसे महापुरुषों से ये सब कथाएं सुननी चाहिए। यदि नहीं है तो भी हमने सुना है प्रभुपाद जी कोई नहीं रहता तो देवाल के साथ में हरि कथा कर रहे हैं, कोई एक बच्चा आ गया उसी को रख देख करके और उसी को उपदेश देने लगे, 10 बज गया, 11 बज गया, घंटी बज रही है, अब प्रभुपाद जी बिगड़ रहे हैं घंटी बजाने वाले के ऊपर में, वो कहते हैं प्रभुपाद जी का शरीर खराब हो जाएगा, उनको भी हटा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी एकदम अविष्ट होकर के बोल रहे हैं, ये सब है भजन। इन सब चीजों से प्रहलाद महाराज उपाख्यान से हम लोग इन चीजों को समझते हैं। उन्होंने इसके द्वारा एक श्लोक और भी है, जिसे मालूम होता है जो प्रहलाद महाराज जी को हम लोग जैसा समझते हैं वैसे नहीं, केवल वैधि भक्ति वाले नहीं थे, उन्होंने सब चीजों का इंगित दिया, उसमें शांत दास सख्य बात्सल्य और मधुर तक का भी इंगित उसमें दिया है। नारद जी साधारण नहीं है ना, नारद जी किसी को हरी कथा कहेंगे ना, योग्य के अनुसार में योग्य कथा कहेंगे, ये बात तो ठीक है, किंतु किसी न किसी रूप में वही भाव आएगा, शांत भाव कहेंगे तो मधुर ले आएंगे, कोई भी कथा कहेंगे वो मधुर भाव लाएंगे। नारद जी ऐसे साधारण नहीं है, इसलिए वो उसमें भी उसने प्रकाश पाया। प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में भी हम लोग एक बार कहीं पाठ कर रहे थे, मथुरा में ही बाघ है क्या, तो इस तरह से हाँ, तो यही उस श्लोक का इसमें बता, जरा बाहर करो तो पहले इसका कर लें। इसमें बतलाया पेश कृष्ण, वो कीड़ा उसको पकड़ लिया, वो अविष्ट होकर के देखा, अब मरा उसको देख करके, और उसी का रूप धारण हो जाता है। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये मन का आवेश है। यदि ये चेतन आभार जो मन है जड़ी भी है, और वो भी चिंतन करते 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 उसी के द्वारा और वैसा रूप उसका हो जाता है, तो भक्ति में यदि हम लोग उस प्रकार का चिंतन यदि हो और गुरु भी ऐसे हो, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। इसलिए अष्टकालीय लीला की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। भक्त विनोद ठाकुर जी ने भी जैव धर्म और इसमें लिखा, अधिकारी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। इसलिए आवेश होकर के करना, नाम करना, हरे कृष्ण हरे, अरे अभी रसोई नहीं बनी, ऐसा नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, देखा जैसे वो कुछ गड़बड़ है, दौड़ करके गए हरि नाम की माला रख करके एक थप्पड़ लगा दिया, ये सब मत करो। आविष्ट होकर के महाप्रभु आविष्ट हो या करें व्याख्यान है ना, कहीं महाप्रभु आविष्ट होकर के, तो इस तरह से काम, आप काम बहुत गंदी चीज है। काम माने क्या, रूप के प्रति आकर्षित होकर के जब कुत्ते जैसे हम बन जाते हैं, इसको कहते हैं काम। उस समय बुद्धि कोई काम नहीं करती, जैसे शंकर जी का मोहिनी का रूप देख करके हो गया, ये चीज है काम। उस समय मन में कंट्रोल करना है, नारद जी के लिए, विश्वामित्र के लिए, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी संभव पर नहीं होता है। काम है बहुत गंदी चीज, इससे खराब और कोई चीज नहीं है, किंतु इसको भी काम को भी भगवान में लगा दिया जाए तो क्या करेगा वो, सबसे उन्नत किस्म की कृष्ण में वैसी भक्ति हो जाएगी। जैसे कामी लोग कहता होता है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कहते हैं कामी को जैसे नारी प्यारी होती है, दिन रात उसमें डूबा रहता है, ऐसे ही आपके चरण कमलों में हमारा चित्त हो आवेश के साथ। सुनने में तो ये खराब लगता है, महाप्रभु जी ने एक ऐसा ही उदाहरण दिया है, एक नारी वो दूसरे पुरुष के साथ में उसका चित्त लग गया है, किंतु घर का काम ऐसे करती जो किसी को मालूम ना पड़े जैसे ये खराब हो रहा है, नहीं तो वो टोकेंगे, कहे तुम्हारे चित्त कहाँ है, इसने मन लगा करके इस काम करते, चित्त कहाँ है पर पुरुष में, बात तो गंदी है किंतु परमार्थ में लाने पर यह सर्वोत्तम बात हो जाती है। इसलिए कृष्ण में आवेश हो तो ऐसा, यही सर्वोत्तम भक्ति है। इसी को पारकीय भाव अपराकृत राज्य में बतलाया गया। इसलिए कामात, भयात, द्वेषात, द्वेष, द्वेष बहुत खराब चीज है, किसी से द्वेष मत करो। निंदा भी दो तरह की होती है, एक प्रतिगर्भ और एक द्वेष गर्भ। यदि प्रतिपूर्वक किसी की निंदा की जाए, जैसे गोपियां कहते हैं कि बड़े काला है कृष्ण को, धूर्त है, चोट्टा नंबर एक, स्कूल उस कुल दोनों को चोरी करने वाला है, दुकुल चौरम, इस तरह से क्या नहीं करती हैं। किंतु यह कैसा है? प्रतिगर्भ है, यह निंदा नहीं। और दूसरी तरफ में यदि द्वेष पूर्वक, इतना भी द्वेष पूर्वक को निंदा हुई तो हमारा परमार्थ ही को चौपट कर देगा, इसलिए ऐसा कभी जीवन में अवसर नहीं आने दो। भयात, भय, स्नेहात, स्नेह, भक्त्या, भक्ति, किसी भी प्रकार से आवेश तदंग हित्वा, अगर आवेश होने से उसके अघव दूर हो गए, किसके, जो जो ऐसा किया, काम का दोष दूर हो गया, शुद्ध में पारमार्थिक प्रीति पाया, द्वेष दूर हो गया, भजन करते करते वैसा करते करते भय दूर हो गया, और उसमें आविष्ट होने से परमार्थ को पा दिया। अब उसी को बतला रहे हैं उदाहरण दे करके, गोप्य कामा, गोप्याज का उदाहरण नहीं है। तभी नारद जी किस लिए कह रहे हैं? अच्छा समझो, अभी अभी तुम समझदार नहीं है, इसलिए उनके लिए कह रहे हैं। गोपियों में काम था? काम तो था नहीं, उनका तो प्रेम था। किंतु साधारण लोग उनको देखते हैं कि अपने पतियों को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके, गुरुजनों को छोड़ करके, लोक लज्जा हाया सब कुछ छोड़ करके कृष्ण से मिली, पर पुरुष से। कहा अच्छा ठीक है, ऐसा भी कोई बात नहीं, तो अभी उनको ऐसा होगा, कृष्ण को वो प्राप्त हो गई, गोपियों का काम था, और ये सर्वोत्तम कोटि का ही है। इसलिए भक्ति में ये जो भी बतलाएंगे, कौन कौन बतलाया, काम, द्वेष, भय, स्नेह और भक्ति का जो बतलाया, इसमें केवल लिया काम को नहीं, भक्ति नहीं लिया, काम को लिया और एक को लिया, संबंध या स्नेह, स्नेह युक्त संबंध, ये दो को लिया और बाकी सबको छाट दिया। इसलिए भक्ति जो होती है ब्रजवादी गोपियों की, वो दो तरह की हुई, द्वेष ये भक्ति का विरोधी है, इसलिए इसको दूर कर दिया, नहीं ये भक्ति में नहीं चलेगा, साधन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्यों, ये प्रतिकूल भाव हो गया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्वेष नहीं होता, उनको मारने के लिए होता है, इसलिए इसको दूर कर दिया, ये साधन नहीं। और भय, भगवान से भय क्या है, इसलिए इसको भी दूर कर दिया, ये तो दोनों दूर हो गए। और रह गया स्नेह, एक अंश में साधनीय नहीं है, ये कौन से साधन है, स्नेहमान प्रणय अनुराग ये साधन का नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। और दूसरे अंश में स्नेह जो है, पांडवों का जो स्नेह है, वो कुछ मर्यादा दिए हुए है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। इसलिए दो रह गए, क्या रह गया, संबंधात्मिका और कामात्मिका। कृष्ण से संबंध होना चाहिए, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा मित्र है, नहीं? इस तरह का कोई संबंध होना चाहिए कृष्ण के साथ में, नहीं तो यह भक्ति नर्वत लीला के अनुसार में नहीं होगी। लौकिक सद्बंधु की भांति उनसे प्रीति होनी चाहिए, लौकिक एकदम, जैसे सखा उनसे लग जाते हैं, अपने कंधों पर लेते हैं, जूठा खिलाते हैं। गोपियां कैसे खिलाती होंगी, अमनिया करके ना, कृष्ण उनसे छीन करके खा रही हैं, छीन करके झपट करके खा ली। जब सखाओं का खा लेते हैं तो गोपियों की तो बात क्या। कभी कभी ऐसा सुना है कि उनके चर्बित तंबुल को भी लेकर के कृष्ण ग्रहण कर लेते और अपना भी दे देते। तो इसलिए कहते हैं कि लौकिक शब्द बंधवत जब तक कृष्ण में भाव नहीं होगा तब तक रागानुगा भक्ति का ये लोभमयी होगा ही नहीं, इसलिए वो वैधिक अंतर्गत में मर्यादा पूजा और उसके द्वारा ब्रज कभी नहीं मिलेगा, ऐश्वर्य शीतल प्रेमे नहीं मोरे प्रीतम। अब दो को केवल लिया, किसको लिया? स्नेह को तो लिया नहीं, अब लिया एक संबंध को कामत। इसलिए वैसी भक्ति जो होती है गोपियों की, एक कामात्मिका और दूसरी होती है संबंधात्मिका। यशोदा जी का संबंधात्मिका है, नंद बाबा का संबंध है पिता, कैसे? नंद के घर में उनकी स्त्री से उत्पन्न हुए, गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए यह संबंध हुआ। यह संबंध कभी भी नहीं छूटने वाला, इस संबंध से ममता होती है। अब बिना ममता के भक्ति नहीं होगी, आवेश नहीं आएगा, इसलिए ममता होना, ममत्व होना चाहिए। भक्ति भाव की अवस्था में ममता थोड़ा सा कम होता है, और सिद्ध अवस्था में जहां प्रेम जब होता है तो क्या होता है, ममता अतिशय अंकित अत्यंत अधिक होता है ममता। ये ममता के ऊपर में ही भक्ति है। यदि गुरु के साथ में तुम्हारी ममता नहीं है तो समझो तुम्हारी सेवा नहीं हुई। वैष्णव के साथ में ममता नहीं है, जे ये मेरे हैं मैं उनका हूं, नहीं होगा कुछ। जहां मेरा हुआ ना, अपना सर्वस्व उनके चरणों में हम दे देंगे। अब ममता नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, इसलिए गुरु के प्रति ममता नहीं होती, यही तो भक्ति में बाधक है। इसलिए गुरु वैष्णव के साथ में ममत्व होना चाहिए, उनके लिए प्राण अपनी हथेली में लेकर के कोई सेवा करे, ये प्रहलाद महाराज जी का उपदेश है। इस तरह से यदि करो तो भक्ति होगी। इसलिए कामात्मिका, और कामात्मिका में भी बहुत से चीजें हैं, कुब्जा का साधारण काम, द्वारकावासियों की गोपियों वहां के रमणियों में समंजसा, और गोपियों में समर्था। समर्था भी बहुत प्रकार की है, लाखों प्रकार की, जिसका जितना सामर्थ्य है। कृष्ण के प्रति ममत्व जिनका अधिक है, श्रीमती राधिका जैसा कृष्ण के प्रति किसी का ममत्व है, इसलिए उनका जो ममत्व है उसी ममत्व का अनुगत्य करना चाहिए। जिसको मधुर स्नेह लाते हैं, प्रारंभ से ही ऐसी भक्ति होती है। इसलिए इसमें यह भी अंगित दिया, संबंध का संबंधात्मिका से भी उतने प्रसन्न नहीं, वो महाप्रभु जी का अपना नहीं था, रूप गोस्वामी का अपना नहीं। रूप गोस्वामी का अपना क्या है? कामात्मिका के अंतर्गत में भी उनकी सेवा की वासना है, उन दोनों में मिलन करके उनकी हम दोनों की सेवा करें, हम लोगों के लिए वही उचित है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में ये सब चीजें सूत्र के रूप में, बड़ी आच्छादित रूप में ये सब चीजें बतलाई गई हैं। इसलिए यदि एक भी चीज को हम लोग समझ सके तो हमारा श्रीमद् भागवत का फल एक उपाख्यान में क्या, एक उसी श्लोक में ही आ जाए। हम लोग ऐसे ही चेष्टा करें, ऐसे ही समझ करके कृष्ण में हमारा आवेश। आज यहीं तक रहे, कितना बज गया? 7:35 हो गया, तो 35 मिनट अधिक हो गया। तो आप लोग इन चीजों को समझेंगे? अच्छा अच्छा, ये समझिए प्रहलाद महाराज की ऐसी ममता थी कि नहीं ममता थी? नारजी के कृपा पात्र हैं, ऐसी उच्च कोटि का तब प्रकाश नहीं किया किंतु थी। इसलिए कृष्ण की भी इनके प्रति ममता आ गई। इन्होंने जो कुछ कहा, भगवान सत्याभिधात्म ने जो भक्त भाषितम जैसे कहा, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान वहां पर उपस्थित थे। बच्चों को उन्होंने उपदेश दिया था बहुत सुंदर, उन उपदेशों को आप लोग पुनः पुनः पढ़ेंगे यदि भक्ति की इच्छा है। अतः जीवन को इसी प्रकार से चलाना है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन निर्वाह हो रहा है, कोई प्रतिष्ठा मिल रही है, कोई कुछ मिल रहा है, अरे भाई भक्ति में प्रवेश करने की चेष्टा करो। चैतन्य चैतामृत श्रीमद् भागवत का अनुशीलन, ने अनुशीलन माने क्या, गाढ़ रूप में आवेश के साथ में अनुशीलन ऐसा करो, नहीं तो जीवन बेकार का हो जाएगा भाई। जैसे हम और अभी भजन करते हैं, उन्होंने शिक्षा दी, और असुर बालक जो असुर के समान बुद्धि होती है, और उन्होंने उनके एक दिन के उपदेश से समस्त बातें मान करके उनके साथ में कीर्तन करने लगे, उनका चित्त एकदम बदल गया। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया गुरु जी को, ये क्या कहां से आवाज आ रही है कीर्तन की, कहां कीर्तन ध्वनि हो रही? उन्होंने कहा, जब क्या बतलाऊं महाराज, पहले एक प्रहलाद था, अब तो हमारी स्कूल में ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो प्रहलाद महाराज ना हो, ये तो बड़े अश्वनिश की बात है। अच्छा तुमने देखा नहीं, अभी तुमको देखो पद करते हैं। अरे प्रभु हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से उसका हो रहा है और उसके संग से ऐसे हो गए। अच्छा बुलाओ उसको, उसको लाया गया। अरे तुम किसके बल पर ऐसा कह रहा है, हमको तुम हमसे डरता नहीं है, कुछ आपका जो बल है वही हमारा बल है, वही प्रभु सर्वत्र है, उनके बिना तो कोई चीज की सत्ता नहीं है, मैं उन्हीं के बल से कहता हूं। अच्छा अच्छा तो तुम्हारी वही रक्षा करने वाला था, हम वही रक्षा कहां है बतलाओ तो, कहां नहीं है ये पूछ बतलाइए, सर्वत्र है। हम लोग देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते, बहुत दिन तक सुन भी रखे, ऐसी निष्ठा ही नहीं होती जो भगवान सर्वत्र है। नहीं तो बदमाशी चोरी करते हैं, गुरु जी से छिपाते हैं, गुरु जी की वैसी सेवा नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को नहीं सर्वत्र देखते, भगवान को सर्वत्र नहीं जानते, तभी विश्वास रखो गुरु के चरणों में, ये सर्वत्र हैं। नहीं कहा जी सर्वत्र हैं, खंभे में, अरे खंभे में क्या बात है, खड़ग खंभ में, खड़ग में भी है, गदा में भी है, अणु परमाणु ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ये सर्वत्र मैं उनको देख रहा हूं। तू देख रहा है, अच्छा तो देखो, तो देखते हैं कि तुम झूठ बोलता है कि सब, बस खंभा सामने था, उठा और गर्जन करते हुए मुष्टिका से प्रहार किया, और प्रहार करना था सत्याभिधातम निज भक्त भाषितम, प्रभु एकदम खंभे से निकले, नाम मृगो नाम मानुषम, उस सभा में एकदम विराट शब्द, तुमुल शब्द हुआ, सब लोगों के कान एकदम बंद हो गए, और देखा अद्भुत एक सिंह है, यहां तक सिंह का, और नीचे मनुष्य जैसा, और कांप रहे हैं क्रोध से, आंखें लाल हो रही, हमारे भक्त को इतना कष्ट दिया, और उसको मच्छर की भांति ऐसे पकड़ लिया, तो वो भी साधारण नहीं था, खिलाड़ी था, जय विजय थोड़ा, इसलिए उनके हाथों से छूट गया, और प्रभु के हाथ से गदा भी छूट गई, देवकार लोग हाहाकार करके एकदम भगे, कहता अच्छा जो है सो है तू, बस गदा लेकर के उनके साथ में लड़ने लगा, और प्रभु उसको मदारी जैसे सांप को नचाता है, गरुड़ जैसे सांप को खिलाते हैं, ऐसा खिलाड़ी से ऐसा नचाने लगे, देवता लगे प्रभु ऐसा मत कीजिए, नहीं तो अभी हम लोगों को भी ध्वंस करेगा, और हम लोगों को बहुत डर लग रहा, आप जल्दी से इसको देखिए, प्रभु जी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, न दिन रहे न रात, आकाश न पाताल, न कोई महीना रहे न कोई दिन रहे, ऐसा खोज रहे थे, न अस्त्र न शस्त्र, न घर के बाहर न भीतर, उसके समस्त बड़ों को भी ख्याल रखते हुए शाम के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने में सूर्यास्त हुआ, न दिन न रात, बस उसको पकड़ लिया और दहली के ऊपर में उसको रखा, और अपने जंघों पर रख करके, और आकाश भी नहीं, आकाश में भी नहीं, नीचे और कोई अस्त्र न शस्त्र कुछ भी नहीं, नखों को एकदम लगाया, और लगा करके उसके नाड़ी निकाल ली और बाहर करके गले में लगा दिया भयंकर, और जटाएं से आग निकलने लगी, जय हो। इस प्रकार से देवता लोग थरे भी काम करने लगे, उसका तो वो तो मरा, एक क्षण भी नहीं लगा उसको मारने में, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, देवता लोग डर के मारे घबरा गए, उस समय में उनको लाए, लक्ष्मी जी को लाए, प्रभु का क्रोध शांत करो, उनका क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है, शंकर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा प्रभु को, डर के मारे थप थरारी कंप लगे, उस समय में ब्रह्मा जी ने और सब लोगों ने मिलकर के कहा बच्चे तुम्हारे लिए प्रकटित हूं, तुम इनके क्रोध को शांत कर दो, जरा जाओ तो बस, प्रहलाद महाराज जी ठुमक करके 5 वर्ष के छोटे बच्चे एकदम निर्विकार भाव से जाकर उनको उछल करके उनकी गोदी में बैठ गए, उनकी आंखों से जो अंगार बरस रहे थे अब शीतल आंसू बहने लगे, क्रोध शांत हो गया, जटाओं से आग निकल रही थी वो थम गई, बोले जी प्रहलाद हमारे आने में विलंब हुआ, तुमको बहुत कष्ट दिया इसने, तुम कुछ बर मांग लो, देवता लोग सब अस्तुति करने लगे, उन्होंने कहा जी कुछ बर मांगो, हमारा दर्शन अमोघ है, उन्होंने कहा जी मैं बनिया नहीं हूं जो कोई इसके बदले मांगे, इसलिए पहले हमारे अंदर में कुछ है ऐसी भावना, इसलिए आपने ऐसा कहा जो बर मांगो, इसलिए बर मांगने की हमारी स्प्रिया दूर हो गया, तो अभी कुछ मांगो, तो जब देने ही है तो हमारे पिताजी ने आपके चरणों में बहुत अपराध किया, भक्तों के चरणों में, उनका दोष क्षमा कर, तब उन्होंने कहा जिन्होंने जिसके कुल में उत्तम वैष्णव हो उसके 21 पीढ़ी तक तर जाते हैं, मध्यम अधिकारी भी हो तो 14 पीढ़ी तक, और कनिष्ठ अधिकारी माने दृढ़ भक्ति वाला भी वो भी तो उसके 7 पीढ़ी के लोग अनायासी तर जाते हैं उसके संबंध से, प्रभु की ऐसी उन पर ये हो जाती है, शुभ दृष्टि हो जाती है, यही अयक्त की कृपा कहलाती है। इधर तुम्हारा पिताजी का उद्धार हो जाए, कुछ और मांगो तो उन्होंने कहा ये संसार वाले जितने बड़े दुखी हैं आपको भूल करके मैं जन्म जन्मांतर को उनका कष्ट झेलूं और उनको आप अपनी गति दे दीजिए। प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने कहा यह तुम्हारी जय हो, हमारी और तुम्हारी इस गाथा को जो कि सुनेगा उन सबका कल्याण हो जाएगा, उनको भगवत भक्ति होगी। ये प्रहलाद महाराज जी की गाथा है, उन्होंने स्पष्ट करके कुछ उपाय बतलाए हैं। गुरु सुश्रूषणम जो शुभानंद ब्रह्मचारी जी बतलाया हो, जो कुछ लाभ इत्यादि है सब प्रभु को अर्पण करो, उनके लिए करो, गुरु की विशंबर रूप में सेवा करो जिससे वो प्रसन्न हो, अपनी प्रसन्नता मत देखो गुरु की प्रसन्नता देखो, उनकी वैष्णव की प्रसन्नता देखो। गुरु कहते हैं जो वैष्णव की सेवा करो तो उसमें मर मिटेंगे, उनकी सेवा करेंगे शुद्ध रूप में, ये सब का करेंगे। ये शरीर एक न एक दिन तो जाएगा ही, क्यों नहीं मल करके वैष्णव की सेवा में इसको लगा दे। वैष्णव की सेवा में पैखाना फेंकना बहुत गंदी चीज है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो भागवत पाठ करूंगा केवल, ये विचार नहीं, जैसे वो प्रसन्न हो वैसी सेवा हम करेंगे जिसे वो प्रसन्न हो। नरोत्तम ठाकुर ने क्या किया, कैसे अपने गुरु जी को वशीभूत कर दिया, इसलिए भगवान की सेवा में ये सब गुरु की सेवा में ऐसा में विचार करके। ईश्वर पुरीपाद ने कैसे अपने गुरु की सेवा की, कैसे वैष्णव की सेवा की, रामचंद्रपुरी जैसा नहीं, रामचंद्रपुरी था ना वैसा नहीं किया। इसलिए प्रहलाद महाराज जी से हम ये शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे और भजन करेंगे ऐसा, तब तो हमारा जीवन ठीक है। भागवत का सुनना हुआ, अन्यथा भागवत सुनना नहीं हुआ बल्कि कुछ सीख लेंगे कुछ पैसा कमा लेंगे बस यही तो खत्म रहा, ऐसा नहीं, बिजनेस के लिए नहीं। बोलो प्रहलाद महाराज की, श्री नृसिंह देव की, गौ प्रेमानंदे आज उसी तरह से भोग की कामनाएं भोगों से भी निवृत्त नहीं है और बढ़ती जाती है। अभी देखिए कोटि कोटि हमारे जन्म हुए, कोटि कोटि बारों में स्त्री पति पुत्र हम लोग हुए, देवताओं का जन्म हुआ होगा, अस्पराय मिली, कभी भोग की कामना नंदन काम में भी नहीं पूरी हुई, तत्पश्चात हम मछली हुए, वहां पर भी हमारी कामना पूरी नहीं, गधे घोड़े सुअर भी हुए, ये समझ ले जरूर हुआ होगा ऐसा, गधे घोड़े कुकर सूकर सब कुछ हम लोग, वहां पर स्त्रियां अबाध रूप से मिली, बच्चे भी एक एक साथ में 16 बच्चे सुकरों होते हैं ऐसा भी हुआ होगा, पुरुष स्त्री बना होगा स्त्री पुरुष बनी होगी, तभी कामना पूरी नहीं, खूब मन खाया होगा सब कुछ हुआ होगा किंतु कभी भी किसी जन्म में तृप्ति नहीं हुई भोगों से। किंतु एक बात थी पूर्व जन्म में किसी संतों से जरूर आप लोगों का संग हुआ होगा, कुछ सुकृति बन गई होगी और उसी सुकृति के नाते आप लोग मथुरा के निकट या कहीं बाहर में जन्म होने पर भी ये साधु संग इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म के सौभाग्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में जरूर कुछ आप लोगों ने अच्छा काम किया, भक्तों की कोई सेवा की, वृंदावन में भी कोई परिक्रमा कर ली होगी, ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ अर्पण किया होगा, किसी तरह से सुकृति बनी होगी, वो सुकृति कम नहीं बहुत पुष्ट हुई होगी, तब वृंदावन धाम में किसी प्रकार से आना हुआ, संतों का समागम बिना पैसे का मिल गया सहज रूप में, यद्यपि भोग की कम भोग दुख नहीं हुआ तो भी ये सुकृतियां हो गई होने से अभी हम लोग बैठ करके सेवा कुंज के वृंदावन के हृदय में सेवा कुंज में बैठ करके भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं को हम लोग श्रवण कीर्तन करने का ये सुयोग हुआ। और इसको सुन करके भी हृदय में वैराग्य नहीं हुआ और भगवान का भजन नहीं हुआ तो फिर वही कुकर सुकर के रूप में अब कितने 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना होगा, ये पक्का समझ लीजिए। इसलिए संसार में रहें न रहें कोई इस पर कोई बात नहीं है। या आप संसार को छोड़ दें या संसार में रहें, किंतु जहां भी रहें गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, जहां भी रहो चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, त्यागी हो सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जैसे भी हो जहां भी रहें स्थाने स्थिता तनुवांग मनो भी, जहां जिस स्थान में वही स्थान में रहते हुए साधुओं का संग करते हुए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो और भगवान का खूब ठाट से कीर्तन करो। उसमें क्या करेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अब जरा सुनिए कोई कीर्तन ऐसे भगवान का कीर्तन करेंगे और करेंगे। जहां भी रहें गृहस्थ रहें त्यागी बने जहां जिस रूप में रहें, किंतु भगवान का भजन करना है। वो क्या है कीर्तन, मेरे मेरे राधा रमन, हाँ इस कीर्तन को थोड़ा सा करो, आप लोग कीर्तन करें और जीवन भर इस कीर्तन को महामंत्र को मत भूलेंगे या ना भूलेंगे। जहां भी रहें जिस रूप में रहें कृष्ण के प्रति ममता बढ़ती जाए, जहां भक्ति होगी अपने आप संसार से विरक्ति भी पैदा कर देगी। इस जन्म में नहीं तो भोग रहे हैं किंतु मालूम हो रहा है किंतु भोगों से भी निवृत्त करा दिया और कृष्ण के चरणों का अमृत तुमको पान करा दिया। इसलिए अभी सुनिए यही समस्त भागवत का सार है। बोलिए, पड़े हुए हैं अग्नि के कुंड में पड़े हुए हैं जो बिना कृष्ण के बिना गिरधारी के कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। या तो कृष्ण रक्षा करेंगे या उनके निजन जो गुरु वैष्णव है अत्यंत उनके प्रिय, इसके अतिरिक्त दूसरा जगत में हमारी रक्षा करने वाला है। हम मदिरा पान करके संसार का मोह मद ममता ऐसे हम हो गए हैं मुक्त हो गए हैं कि ये ख्याल नहीं है कि हम दुख भोग रहे हैं। जैसे कोई संसार में शराब पी करके रास्ते में गिर जाए उसको 2-4 लाख भी कोई लगा दे, कुत्ता भी उसके ऊपर में सत्कार कर दे पानी पिला दे तो अभी उसको पता नहीं होता जो मैं कहां पड़ा हूं किस रूप में पड़ा हूं। यही गति हमारी है, भगवान की सेवा छोड़ करके प्रेम रूपी अमृत हम कहां ये शराब पी करके मत तो रहे हैं। इसलिए रक्षक कौन है, वो कीर्तन क्या है, राधा रमन गिरधारी। इसके अतिरिक्त और कौन है याद रखिए। बोलिए, कोई रक्षा नहीं कर सकता जगत में, ठीक जो पति अपनी खुद ही रक्षा नहीं कर सकता। नहीं आ रहा, खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी की क्या रक्षा करेगा। स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं या पति का रहते हुए स्त्रियां क्यों मर जाती हैं, खुद ही पति क्यों मर जाता है। ये पति पालन करने वाले और रक्षा करने वाले नहीं है, अरे परम पति तो वो मेरे गिरधर गोपाल हैं। इस चीज को ठीक रखो, इसे शांति और सुख नहीं होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल बस इसी से ही शांति होगी, उनको अपना बनाओ। जिनके प्रिय राम वैदेही तजिए कोटि बैरी समझत पपाना बरसे, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजब कंत ब्रज बनितन भय जग मंगल कार। इस चीज को याद रखो, इसलिए कृष्ण ही हमारे सर्वस्व। ये यदि समझो रुपया पैसा रक्षा नहीं कर सकता है, शांति नहीं दे सकता है। यदि होता तो अमेरिका के करोड़ों पति लोग भारत वर्ष में इस संवाद को लेने के लिए आते, हमको भक्ति दे दीजिए। नहीं हो सकते, रशिया एक तरह से अमेरिका से भी अब टॉप होने वाला था, क्या दुर्गति हुई? धन अस्त्र शस्त्र उसको रक्षा कर सका? अरे रावण से बड़ा कौन धनी होगा? सोने की लंका बनाई, लोग सोने के नथ कंगन और ये सब पहनते हैं, हार पहनते हैं। उसका भवन ही कैसा था? लंका की चार दीवारी सोने जवाहरातों से बनी हुई। रक्षा कर सका उसको सोना और चांदी? दुर्गा जी की पूजा उनको रक्षा कर सका? हनुमान ने एक मुष्टिका मारी, वो गिर गई, भागी वहां से। इसलिए एकमात्र रक्षक कौन है हमारे? यही ब्रजनंदन श्याम सुंदरी हमारे गिरधारी हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसको गांठ बांध लीजिए। कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ, कोई सुखी नहीं हुआ, धन से अशांति ही बढ़ती है। इस चीज को वो अच्छी तरह से गांठ बांध लिए। इसलिए बतलाया कि यदि भगवान का भजन करना है तो निष्किंचन बनो, अकिंचन बनो। कुछ भी जगत में हमारा नहीं है, कृष्ण ही हमारी संपत्ति है, इस चीज को समझो, अन्यथा सुख कभी और शांति नहीं होगी। 84 के फेर में, 99 के फेर में हम लोग पड़े हुए हैं, नहीं समझाने पर भी नहीं समझते हैं, किंतु इस चीज को समझो। इसलिए ये कीर्तन जरा फिर से सुनिए और इसको कीर्तन करेंगे, और ये कीर्तन करने के बाद में महामंत्र जरूर करेंगे। अभी ये ब्रह्मचारी अपनी मधुर लीलाओं को जगत में प्रकाशित किया। गोलोक जाकर के अप्रकट स्थिति, इतनी मधुर लीलाओं को हमने जगत में प्रवाहित किया, लोग इसको कैसे पान करके इसमें डूबेंगे? जगत में बहुत कम लोग हैं जो इनको समझें, बहुत रेयर हैं। कोटिस्वपि महामुनि भी, ये तो नारायण के लिए कहा गया, कृष्ण के लिए क्या कहा गया? करोड़ों करोड़ों में से कोई एक होता है, तो करोड़ों करोड़ों नारायण के भक्तों में कोई एक कृष्ण भक्त, उन करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला ब्रज का भक्त, और उन लोगों में से करोड़ों करोड़ों में से कोई वात्सल्य रस का एक, और उन करोड़ों करोड़ों में से कोई एक बिरला महाप्रभु जिसको देने के लिए है वो चीज है। कैसे दिया जाए? कहा जी ऐसे होगा नहीं। राधा जी को मनाया, तुम भी हमारे साथ में चलो। ये राधा रमण यही है राम, प्रकट इसी के माध्यम से उन्हें वो उच्च कोटि का जो प्रेम है, जो ब्रह्मा शंकर और दूसरों के लिए नारद के लिए भी दुर्लभ है, उसको नाम के माध्यम से ये दिया। इसलिए इस नाम को साधारण मत समझिए, इसलिए इस नाम को कीजिए। लो जल्दी करो, जीवन भर इस नाम को हम फूलेंगे मत, हरे राम से मत आरंभ करेंगे तो उसका फल कट जाएगा। इसमें एक विशेषता, कैसे करेंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण और हरे राम आओ और पीछे, अन्य तो उसमें ही बाधा हो जाएगा। नारद ऋषि के लिए यहां तक कि उद्धव के लिए भी असंभव था, दुर्लभ था। वह प्रेम गली गली में वितरण किया, मद्यपों को वितरण कर दिया, मुसलमान इत्यादि को भी, हरिदास ठाकुर इत्यादि के माध्यम से सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। बाद फलुओं को नचा दिया इस कृष्ण के प्रेम में, इसी नाम के माध्यम से। यह नाम को और कुछ नहीं, राधा और कृष्ण का स्वयं ये नाम है, वो स्वयं ही है। इसे सब कुछ कीजिए किंतु इस नाम को नहीं भूलना है। अब हम लोग चलते हैं लीला कथा पर, आते हैं। लीला कथा का भी प्राण है ये हरिनाम, ऐसा भी समझिए। लीला कथा और हरि नाम में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही चीज है, इसको भी समझिए। अब खूब ध्यान से भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। यद्यपि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्वतः, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मत सर्वस्व राम कमल लोचन। हनुमान जी ये कहते हैं श्रीनाथे और जानकी नाथे, कृष्ण में श्री माने राधा, राधिका नाथे और जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, किंतु रसगत वैचित्र है। रूप गोस्वामी ने भी ऐसा रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूप मेशा रस स्थिति, राम नारायण कृष्ण परमात्मा ये सब एक तत्व हैं, किंतु रस की दृष्टि से कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्ण ने राम के रूप में जो लीलाएं की अपने अवतीर्ण होने से पहले द्वापर युग के पहले त्रेता युग में, वो कृष्ण ने ही लीला की राम के रूप में। पहले मर्यादा सीखो, पिता के प्रति, माता के प्रति, स्त्री के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति जो मर्यादा है इसको सीखो। जगत में रहने के लिए शास्त्र में जो वेद की मर्यादाएं हैं उनको पहले सीखो, तब कृष्ण लीला में प्रवेश करना। मर्यादा का पहले से उल्लंघन करेंगे कृष्ण लीला में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मर्यादा की शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने ही राम के रूप में अवतीर्ण किया, अवतार लिए। मैं सब लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं। इसमें से विशेष विशेष जो लीलाएं हैं, जो कि तत्वतः जो लीलाएं हैं जिनके संबंध में हम थोड़ा सा पूरा रूप से नहीं जानते हैं, उसको मैं स्पष्टीकरण करते हुए चलूंगा बतलाऊंगा। सभी लोग जानते हैं महाराज दशरथ अब बूढ़े हो गए, उनका तीसरा काल आ गया, वो प्रौढ़ हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ। 360 रानियों से उन्होंने शादी की एक एक करके, अब उनका जो तीसरापन है वो आया, तीसरा वृद्धावस्था जैसे। उनकी उम्र कितनी होगी उस समय, काफी उम्र थी। 360 रानियों से एक एक से विवाह करते गए किंतु किसी को भी पुत्र नहीं हुआ, बड़े दुखी हो गए। वृद्धावस्था आ गई, पुत्र पुत्र तो हुआ नहीं। मन लगाने के लिए घर में राजभवन उनको काटता था, कोई बच्चा रो नहीं रहा, कोई हमारे घर में बच्चा खेलता नहीं है, हमारे पितरों का पिंड कैसे होगा, लौकिक रीति से ये सब सोचने लगे। मेरा जीवन व्यर्थ गया, बहुत मैं पापी था इसलिए पुत्र नहीं, जैसा कि लोग सोचते हैं। एक दिन मृगया करने के लिए चलते चलते कायकय देश में पहुंचे, वहां पर कैकय नाम के राजा थे, उनके नाम से यह राज्य था, उन्हीं की बेटी थी कैकई। उस समय कैकई की उम्र 16 वर्ष की थी, अब वो धीरे धीरे किशोर हो रही थी। उसी समय महाराज दशरथ मन को बहलाने के लिए मर्गया करते करते बहुत दूर पहुंच गए और कैकई देश में अपने मित्र कैकई राजा के पास में गए। महाराज ने कहा जे बेटी, हमारे मित्र और वृद्ध जैसे अब ये प्रौढ़ हैं, ये महाराज दशरथ आए हैं, ये कोसला के राजा हैं, इनकी तुम सेवा करना, बस उनका खाना पीना और पानी इत्यादि सब प्रकार की सेवा, पलंग इत्यादि लगा देना, सब प्रकार की सेवा उसने किशोरी लड़की ने की, अभी विवाह नहीं हुआ था, उसने ऐसी सेवा की और इतनी गुणवती थी और इतनी रूपवती थी जो कि विश्व की एक मानी ही सुंदरी थी, और रूपवती और गुणवती, बड़ी शीलवती भी थी। उसने जब सेवा किया तो ये बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में अब जाने का समय हुआ तो महाराज से ये मिले। महाराज ने कहा जी आपकी क्या सेवा करूं, कहने मैं ऐसे ही मैं संतुष्ट हूं, मेरी आपकी लड़की ने मेरी बहुत सेवा की, तो मैं ये चाहता हूं कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो उस लड़की को हमको दे दिया, मैं शादी करूंगा। तो वो कुछ चिंता करने लगे,
चिंता करके बोले, मैं लड़की की तो शादी करूंगा आपसे, किंतु एक वचन देना पड़ेगा। कहिए क्या वचन? इसका जो लड़का होगा वही राजा होगा आपके राज्य का। महाराज दशरथ आनंद से भर गए। कहिए हमारे तो कौशल्या और कौन सुमित्रा और हजारों रानियां हैं, किसी को पुत्र नहीं हुआ है। यदि इसी बहाने यदि ये पुत्र हो गया तो वही तो राजगद्दी का अधिकारी होगा, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। इसलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सोना में सुगंध बात हो गई, इसलिए मैं इसको कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं। ठीक है, यदि इससे पुत्र हुआ तो वही राज्य का अधिकारी होगा, कह दिया। इसके बाद में बड़े अच्छी तरह से शादी हुई और उस लड़की को लेकर के ये यहां पर अयोध्या में आए। इससे भी लड़का नहीं हुआ, वशिष्ठ जी के शरण में गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए सिंह ऋषि का आवाहन किया और वो आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। अपुत्रेष्टि होने यज्ञ पर अग्नि देव प्रकट होकर के अक्षरू ले आए यज्ञ का अवशिष्ट भाव और कहा कि अपनी रानियों में से जिसको चाहते हो एक को खिला दो। उन्होंने यह मस्तुका करके ले लिए और उसको उन्होंने सोचा कि किसको दो, कौशल्या बड़ी रानी है, बड़ी सुशील है, धर्मात्मा है, राजा की सेवा भी करती है, और उसके बाद में सुमित्रा जो आई है वो बड़ी गुणी है, वो कौशल्या की भी सेवा करती है, महाराज दशरथ की भी सेवा। उन्होंने इसका मन जीत लिया। और जो छोटी रानी आई ये तो और सुशील और गुणी और सबसे सुंदरी है, अभी छोटी सी है ना, राजा उसके वशीभूत हो गए हैं। उनसे आप किसको दे, तीनों में से कभी हाथ लपकता है कि ये इसको दे, कैकई को दे, कभी होता कि नहीं ये मर्यादा की हानि होगी, ये उसको ही देना चाहिए। अंत में सोच साच करके कुछ विचार करके उन्होंने उसका आधा दो भाग कर दिए और एक भाग दे दिया, आधा भाग जो कौशल्या को, अब रह गया आधा, आधा का भी भाग किया। और उसने देखा जो नीति तो यही कहती है कि दूसरी प्रिय स्त्री को दिया जाए, उन्होंने दे दिया सुमित्रा जी को, वो दूसरी है ना, इसलिए दिया। अब रह गया कितना, आधा का आधा कर दिया। अब आधा का आधा दे करके आधा किसको दिया, कैकई को दिया। और जो आधा का जो आधा फिर बच गया 1/8 वो फिर दे दिया किसको, सुमित्रा जी। इसलिए कौशल्या से राम हुए परिपूर्ण ब्रह्मा, और दूसरे जो दे दिया आधा का आधा उससे हुए लक्ष्मण जी, राम के सबसे अधिक श्रेष्ठ भक्त माने उनके सेवक, धरणीधर वही बलदेव प्रभु जी हैं या नित्यानंद प्रभु जी हैं। और फिर जो आधा का आधा का आधा दिया वो हुए भरत महाराज, और उसका जो जो बाकी रह गया वो दे दिया वो हो गए शत्रुघ्न जी। इसलिए राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बनी, उन दोनों में प्रेम इस तरह से चलने लगे। कुछ दिनों के बाद में जब बड़े हुए तो वो स्नान करने गए, रावण ने देखा ये हमारा काल तो जन्म ले लिया, ये तो हमें मारेगा, इसलिए वो घड़ियाल बन करके मगर बन करके सरयू नदी में आ गया। रामचंद्र जी का पैर पकड़ के खींचने लगा, रामचंद्र जी ने धनुष ऐसा मारा, एक घास तिनका लिया उस पर तिनका का ही बाण मारा, जो वहां से भी एकदम जाकर के गिरा कहां, लंका में, बच गया किसी प्रकार से। राम का यह प्रताप देख करके उसके अंदर में भीतर में डर तो हो गया था, कौन ये जय विजय थे रावण और कुंभकर्ण। ऋषि के हिसाब से चतुर्सन के हिसाब से ये आए हुए हैं, वो भी भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, किस रूप में हमने ये बहुत बार बतलाया है। इसके बाद में ये लोग और कुछ बड़े हुए, विश्वामित्र जी आए, कहे आपने राम और लक्ष्मण को हमको दे दीजिए हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए, कहे हमारा प्राण ले लो, हमारी सेना ले लो, किंतु इनको मत दो, हम नहीं देंगे। बहुत समझाया, नहीं माने, वशिष्ठ जी आए बला बोले जिसे दे दीजिए, नहीं तो आपका बहुत ही अकल्याण होगा और देने में ही आपको बहुत से भलाई है। समझाने से दिया था, किंतु इस बार उन्होंने क्या किया, भरत की और शत्रुघ्न जी को दे दिया, लेकर के चले। जबकि वन में पहुंचे सिद्धाश्रम के पास में, तो वहां से दो रास्ता जाता था, एक बहुत निकट का और एक बहुत दूर का, घूम घाम करके। जो निकट वाला था वो असुरों से दैत्यों से भरा हुआ बड़ा बिहर था, बड़ा भयानक। उन्होंने राम लक्ष्मण से पूछा, भाई जल्दी वाला रास्ता चलेगा सीधा वाला न कि देर से? किंतु वो निष्कंटक है और इसमें कंटक है, बहुत से बड़े बड़े असुर। उन्होंने कहा ये दूर वाला रास्ता ही ठीक है, निष्कंटक पहुंच जाएंगे। कहा ये राम लक्ष्मण नहीं हो सकते, लेकर के लौट गए। महाराज से कहा हमको तुमने धोखा दिया, ये तो राम लक्ष्मण कभी हो नहीं सकते। आप बड़े दुखी हुए, फिर वशिष्ठ जी के कहने से राम लक्ष्मण जी को दिया। फिर जब राम लक्ष्मण लेकर के आ रहे थे, पूछा अच्छा ये सीधा रास्ता निकट वाला चलेगा या दूर वाला? तो ये निकट वाला जल्दी से अच्छा है, अरे इसमें बड़े असुर है, कोई भी बात नहीं। आगे उससे बड़े सबसे पहले कृष्ण ने मारा था किसको? पूतना को। इन्होंने सबसे पहले आरंभ किया किससे? तारका को। स्त्री बद से ही दोनों चले, उनको मारने के लिए आई और ऐसे बाण मारा कि वो गिर गई। उसके दो पुत्र थे मारीच और सुबाहु। यही मारीच पहले पीछे से बना है सोने का हिरण सीता जी को चोरी करवाने के लिए, उस समय ये भी आया उनको मारने के लिए, और सुबाहु भी आया। सुबाहु को तो मारा था, वो तो साथ ही साथ मर गया, और जितने उसके अंक थे सबको मारा। और इसको एक ऐसा बाण मारा जो एकदम लंका में जाकर के रावण के सामने गिरा। वहां किस लिए छोड़ दिया? हाँ कुछ मिलाए बाकी है ना, रावण को भी तो मरना है, सीता जी की चोरी नहीं होगी, इसलिए उसको छोड़ करके मार दिया। और वो राम का भीतर भीतर भक्त हो गया, उनसे डरने लग गया। इसी बीच में वहां से यज्ञ समाप्त करके धीरे धीरे अहल्या जी मिली, उनका उद्धार किया, पाषाणी उनको साप मुक्त करके सुंदर नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वहां से जनकपुरी में वो ले गए विश्वामित्र इत्यादि ऋषि लोग, शाम को वहीं पर ठहरे। महाराज जनक अपने पुरोहित क्या नाम सतानंद जी को, वही अहिल्या के पुत्र और गौतम के पुत्र इनके पुरोहित थे, उनको लेकर के आए। मैंने बतलाया ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, भरत और शत्रुघ्न विश्वामित्र जी के साथ में धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। रात में बहु आवभगत कर रख दिया, सवेरा हुआ। रामचंद्र जी किस प्रकार से अपने गुरु की सेवा करते हैं, परब्रह्म होकर के गुरु जी से पहले उठे और गुरु जी के सो जाने के बाद में रात में सोते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पुष्प इत्यादि चयन करना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े सुखाना, उनको सब चीज की व्यवस्था करते हैं। हम लोग गुरु जी के सोने के पहले ही सो जाएंगे, सेवा से कोई संबंध नहीं। और गुरु जी उठेंगे उसके पहले, उसके एक घंटे के बाद गुरु जी उठेंगे 3 बजे, और हम उठेंगे कब? 5 बजे उठेंगे। बड़ी मुश्किल से आरती के समय में भी आलस्य आएगा तो उसमें भी नहीं आएंगे, डर के मारे यदि आ गए। इसलिए गुरु सेवा कैसे होनी चाहिए? विषम में गौरव सेवा, अंततः विधि मर्यादा के साथ भी करो, यदि वैसा नहीं होता है तो। बिन गुरु भवन भी तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई, ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ज्ञानी हो तो बिना गुरु के भव सागर नहीं तर सकते, ये गारंटी है। कृष्ण की भक्ति तो रहे दूर, बहुत दूर रहे बिना कृष्ण की, बिना भगवत भक्तों के, बिना गुरु के कोई भव सागर नहीं तर सकते। इस चीज को गारंटी समझ करके ऐसे ही गुरु की सेवा करो, जिसे वो प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति जैसी दुर्लभ तुमको चीज दे सके। अपने राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से नहीं होगा, जब तक इस गुरु दीक्षा के माध्यम से कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति नहीं देगा, यही भक्ति लता का बीज है। और दे करके क्या करते हैं? उसको पानी देखते हैं, सींचते हैं, रक्षा करते हैं। वही धीरे धीरे बेल होती है, वह बेली ब्रह्मांड को पार करके चली जाती है, बैकुंठ में जाती है, उसको भी पार कर जाती है, रामलोक में जाकर के फिर द्वारका लोक को पार करके, मथुरा को पार करके ब्रज में पहुंच जाती है, और कृष्ण के चरणों का आश्रय कर लेकर के फलती फूलती और पकती है, उसमें मीठे मधुर फल लिखते हैं, निगम कल्पतरु उर्वलितम फलम। और वहीं से टपकता है फल, कहाँ आता है? जहां साधक उनकी सेवा कर रहा है श्लोक में, और वही साधक इस पेड़ की लता को अवलंबन करके धीरे 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 इन सब लोगों को पार करता हुआ कहां पहुंच जाता है? बोलो वृंदावन में कृष्ण के चरणों का आश्रय करता है। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा पंथा विद्यते न आयनाय, कोई पथ ही नहीं है दूसरा है? इस तरह से रामचंद्र जी विश्वामित्र जी की सेवा कर रहे हैं। सवेरा हुआ, राम और लक्ष्मण दोनों बगीचे में गए, फुलवाड़ी में गए, तुलसी की रामायण बहुत ही सुंदर अलबेला वर्णन है उसमें। जब वहां पर गए, फूल चुन रहे थे, इतने में पैरों की पायजेब की नुपुर की ध्वनि निकली, बहुत मीठी मधुर। रामचंद्र जी जो फूल अविष्ट होकर के चुन रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया और फूल तुलते तुलते फूल चयन करना उनका रुक गया। इधर देखा, जो नजर जो उधर गई फिर लौटी नहीं, चार नजर, दो नजर थी वो चार नजर हुई। सीता जी ने उसी समय में उनके तरफ में देखा, उन्होंने देखा, इनका मन विवश हो गया। राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अब मुझको आत्महत्या करनी है। क्यों भैया आत्महत्या क्यों करनी? रकुल की ऐसी रीति है जो दूसरी स्त्रियों को मर्यादा देते हुए लड़की को लड़की और दूसरी स्त्रियों को मां या बेटी या बहन के रूप में देखते हैं। आज हमें जनक नंदिनी को देखा और वो हमारा मन विवश हो गया, उनके तरफ में चला गया, ये तो मैंने बहुत अन्याय किया, हमको मर जाना ही अच्छा है। मैंने कहा ये कभी ये नहीं हो सकता है, सूरज पूरब की तरफ से पश्चिम में उग जाए, किंतु जदकुलों इसका सूर्य वंशियों का चित्त ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मालूम है विधाता ने आपके लिए ही सीता जी की रचना की है, ऐसा समझिए। देखिए अब आगे क्या होता है। वहां से लौटे गुरु आश्रम में और सीता जी गई, सीता जी का मन चुरा लिया राम ने, राम का चित्त किसने चुराया? उन्होंने चुराया। शाम को सुनैना जी का निमंत्रण आया विश्वामित्र के लिए, आप उन राजकुमारों के साथ में हमारे घर में पधारिए, आप ही पधारिए, यहीं पर हमारा आज निमंत्रण है, हमारी घर में भिक्षा होगी। तो ये विश्वामित्र के लिए निमंत्रण नहीं गया, किसके लिए गया? बड़ी चतुर है ना, राजा की स्त्री है। जनक जी का, मैं इस फेर में नहीं पड़ता, तुम जैसा हो तुम निमंत्रण करो, तुम खिलाओ, तुम जैसी करो। उनको असल में खिलाना नहीं था, उनको क्या करना था? राम को सीता जी को दर्शन कराना था, जी दिखलाना है, बस बहाने से निमंत्रण किया। सीता जी वहां पर पहले से बना रही थी रसोई इत्यादि, सब लोग राम और लक्ष्मण जी इनके साथ में पहुंचे, ऋषि का चरण धोया और सब वंश पर छिड़का और साथ साथ में प्रसाद पाने के लिए निवेदन किया। कौशल वो सुनैना जी परिवेशन करने लगी, सीता जी भीतर में है, उन्होंने कहा जा रहा बेटी ले आना तो जरा थाल में, वो सोने के थाल में माल हुआ है उसको ले आओ। तो माता जी क्या आज्ञा का कैसे अवहेला करें, किंतु जब ही आई राम की तरफ में देखा तो हाथ से थाल झंड नीचे गिर पड़ी। इसके बाद में दौड़ करके भगी और एकदम भीतर में निवास में चली गई। रामचंद्र जी ने खूब भरपेट आनंद के साथ में भोजन किया। अब 10 बजे ये लोग स्नान स्नान करके फिर तैयार होकर के विश्वामित्र जी ने कहा जरा धनुष को तो देखें। महाराज जनक से कहा, महाराज जनक धनुष को ये बच्चे देखना चाहते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है, मैंने वीर विहीन मही में जाना, अब पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, ऐसा जाना, मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता, आज मैं इसके लिए पछताता नहीं। आज जनकपुर के सभी लोग कह रहे हैं कि सीता जी का शादी हो, किंतु अपने वचन से मैं बताऊंगा मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसा जानता तो प्रतिज्ञा नहीं करता, और भंग भी कैसे प्रतिज्ञा करूं। बड़े दुख की बात है, जितनी वहां की महिलाएं थी राजा जनक को गाली गलौज करने लगी, ऐसा क्यों तुमने प्रतिज्ञा की, ऐसे सुंदर सुकुमार राजकुमार से सीता जी की शादी हुई, सब प्रतिज्ञा रखो। तो वही जनक जी कह रहे हैं मैं ऐसा जानता तो क्यों मैं ऐसा प्रतिज्ञा करता। लक्ष्मण जी वहां पर बैठे उठ करके खड़े हो गए, सिंह सावक जैसे तम तमा करके ओट फड़फड़ाने लगे, बोले जहां पर सूर्यवंशी कोई भी व्यक्ति हो, राजकुमार या कोई भी बच्चा भी हो, उसके सामने वीर बहीन मैं ऐसा कहना आपका अनुचित हुआ। अभी चाहो तो उठ करके खड़े होकर के इस पृथ्वी को गेंद की तरफ आकाश में उड़ा दूं, इसको लेकर के सौ जोजन में दौड़ जाऊं, ये धनुष क्या चीज है, ये तो पुराना धनुष है। लड़कपन हमने ऐसे बहुत सी धनुषियां देखी, ऐसा मत करिए, ये हम लोगों का अपमान है। बड़े प्रसन्न हो गए, उनको तो होना चाहिए था क्रोध, किंतु क्रोध नहीं, हो गया क्या, बड़ा आनंद हुआ। तो मेरी प्रतिज्ञा शायद पूर्ण होने वाली है। विश्वामित्र जी ने राम की तरफ में इशारा किया, वो सिंह साहु की तरफ में सिंह जैसे चलते हैं हिलते हुए उठे और धनुष के पास में पहुंचे। लक्ष्मण जी की तरफ में इशारा किया, लक्ष्मण जी शेष है, उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनमें, बस अपने पैरों से पृथ्वी को दबा दिया। क्यों, धनुष का संपर्क एकदम पृथ्वी से क्या त्रिलोकी से था, त्रिलोकी उठ जाएगी किंतु त्रिलोकी के साथ में धनुष उठेगा ऐसे नहीं उठेगा। इसके पहले रावण आया, कुंभकर्ण आया, देवता लोग आए, राम उठाने लगा रात में, बलि कौन था बाणासुर ने इनको मना किया, खबरदार जाना मत, जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी मट्टी पीली हो जाएगी, मत जाना। किंतु वो माना नहीं, जरा सुना दीजिए तो जरा दे दो, क्षण मात्र में ब्रह्मांड उठाया और सब फल तीन क्षणों में ही भक्त हो गया, टूट गया बड़े जोर से सब महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए, रामा प्रसन्न हुए, राजकुमार राम प्रसन्न हुए, सीता जी के हाथ में जय माला हुई, सीता जी दुल्हन के रूप में सही सखियां को लेकर के चल रही हैं, आनंद के मारे उनके पैर नहीं पड़ते। रामचंद्र जी के निकट में आई, एकदम प्रेम में एकदम विभोर हो गई, हाथ से माला गिरने लग गई, सखियों ने माला के साथ में उनके हाथों को पकड़ लिया और हाथ उठा करके रामचंद्र जी के गले में उठा। इसके बाद में बारात के लिए महाराज दशरथ को बुलाया गया, दशरथ आए, चारों बेटों में से दो बेटे अभी तो थे वहां अयोध्या में, वशिष्ठ जी और बड़ी बड़ी सेनाएं और सब लोग वहां से उपस्थित हुए। उस समय में चारों राजकुमारों की शादी सीता जी से रामचंद्र जी की और उनके भाइयों की एक अपनी पुत्री का विवाह लक्ष्मण जी से और दो और कन्याएं अपने भाई की इस लड़की उनके साथ में शत्रुघ्न और उनको उर्मिला इत्यादि की शादी कर दी। बारात लौट करके जा रही थी, उसी समय में बड़ी जोर से आंधी उठी, पेड़ गिरने लग गए, सबके कानों में ताले लग गए, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। देखा जाए आकाश मार्ग से उड़ते हुए परशुराम दिया, परशुराम को देखकर के जितने राजा और महाराज दशरथ भी हृदय कंप गया, राजा जनक को थर रही लग गई, अब क्या हो, 21 बार पृथ्वियों का संहार किया, क्यों बेट में जो बच्चे रह गए थे वही बचे थे, ये कहां से आफत आ गई, बड़े अच्छी तरह से सीता जी की शादी फादी हो गई, सब कुछ हो गया और ये अंत समय में ये पहुंचा, नहीं कौन तोड़ा इस धनुष को, क्यों शब्द हुए, यहां पर क्यों लोग आए हैं। विश्वामित्र जी चुपचाप मंद मुस्कान कर रहे हैं, रामचंद्र जी भी निर्भीक बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी निर्भीक बैठे हैं और बाकी सब लोग कांपने लगे। मैंने कहा यदि कोई ऐसा कौन है जो हमारे साथ में आशीष सत्य होता कि हमारे गुरु जी का दिया हुआ ये प्राचीन धनुष था, कौन तोड़ा इसको, जल्दी से बोलो नहीं तो ये सभा सबको काट देंगे। लक्ष्मण जी ने राम को प्रणाम किया, बाहर उनको विश्वामित्र जी को उठ करके खड़े हो गए, कुछ तम तमा गए, मुख विवर्ण हो गया, लाल हो गया, बोले मैं तो आपको ऋषि समझता था क्योंकि आपके केश सब ऋषि महर्षि जैसे हैं, किंतु आपके हाथों में ये जो है वो फरसा और धनुष बाण और आप ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं, मैं बचपन में तो बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली है, आपने तो कभी कहा नहीं, ये तो उठाने के समय में ही अपने आप वो टूट करके गिर गई, तीन टुकड़े हो गई, इसमें क्या दोष है, तो बता तुमने तोड़ा या इसने तोड़ा। काजे रामचंद्र जी ने उनको शांत किया, बोले जैसे ये धनुष तो मैंने उठाया किंतु टूट गया, पुराना था, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, और बार बार उनको देख करके लक्ष्मण जी को और मारने के लिए उठते हैं, और जितना ही क्रोध करते हैं उतना ही उनका वो ईश्वरत्व का जो भाव था सत्यावेश अवतार वो निकल रहा है। उन्होंने बोला जैसे ये छोटा सा बच्चा है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं तो इसको अभी मार देता। उन्होंने कहा कि यहां पर कोहन बतिया कोई नहीं, कोहन माने होता है काशीफल, उसके जो बच्चे होते हैं छोटे से लगते हैं वो उसको बतिया कहते हैं भोजपुरी भाषा में, तो उसे दास जी ने भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग किया। उसको यदि अंगुली दिखा दीजिए ये बहुत सुंदर हो रहा है फल, तो उसी समय में मुझा करके सूख जाएगा। तो लक्ष्मण जी मैं कोहन का बतिया नहीं हूं, जब तुम्हारी अंगुली देखना है से मैं मर जाऊंगा, यदि मैं आपका ये ऋषि जैसा शरीर नहीं देखता तो मैं दिखला देता जो मैं कौन हूं। यहां पर किस सूर्यवंशी कोई वीर हो वहां पर आपको ऐसी बखारना नहीं चाहिए सेखी। अब तो बड़े लाल हो गए और फरसा उठाया, किंतु फरताहास में से नूट निकलता। बहुत सी और सी बातें हैं, मैं इसको संक्षेप में बतला रहा हूं। राम की तरफ में देखा, विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। अब उनको समझ में आया जिस जिनकी शक्ति से मैं परशुराम बना हुआ हूं वही तो नहीं है हमारे आराध्य देव। चिंता हुई, और उनके हाथ में एक धनुष था नया वज्र से, वो जो गति की ऋषि से उनसे तीन चीजें बनी थी, एक वज्र बना और शिष्ट से दो धनुष बने थे। एक धनुष को तो तोड़ा इन्होंने और दूसरा धनुष शंकर जी ने उनको दे दिया था। उसको कहा जी इसको यदि चाप इसकी ये चढ़ा दो प्रत्यंचा तो मैं मान जाऊंगा। हाथ में देते अपने आप वो प्रत्यंचा चढ़ गई, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। राम ने कहा जी हमारा ये बाण अमोघ है, मैं धनुष बाण तो इसलिए जो चढ़ाया है बाण ये कहीं नहीं कहीं जरूर जाएगा। बतलाओ तुमको तुम्हारे सिर पर छोड़ू ना तुम्हारे कर्म के ऊपर मैं छोड़ू। अरे प्रभु यदि मैं बच जाऊंगा तो फिर तपस्या करके अपनी शक्ति अर्जित कर लूंगा, आपकी भक्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे पूर्व पूर्व जो जो कर्म है, कर्म माने वहां जो सत्तावेश अवतार है वो शक्ति को आप हरण कर। बस उन्होंने बाण मारा और उनकी शक्ति को हरण करके ले लिया। वो केवल साधारण एक जीव बन गए। अब वो उड़ करके जाते आते थे और जो कि जो शक्ति थी वीरता थी अब वो रही नहीं। उनको प्रणाम करके मंदराचल में चले गए, दक्षिण भारत वर्ष में। मंदराचल ना कौन सा याद वहीं पर चले कौन सा महेंद्र पर्वत पर चले गए और तपस्या करने लगे। और वो जो बाण उन्होंने छोड़ा उनका वह लेकर के और गिरा थार डेजर्ट में, राजस्थान इत्यादि के, वहां एकदम मरुभूमि हो गया। उसी के साथ में सहारा रेगिस्तान है वहां अफ्रीका में, अफ्रीका इत्यादि उसी भाग में वो सब मरुभूमि बन गया। इसके बाद में अयोध्या में लौटे। कैकेयी जी ने बड़ा आव भगत करके अपना कनक भवन उनके लिए दे दिया अगवानी की। कुछ दिन के बाद में महाराज दशरथ को उनके साले ने कैकेयी के पिताजी ने अपने भांजे को अपना नाती को क्या किस क्या कहते हैं उनको बुलाया। भरत और शत्रुघ्न वहां पर चले गए। वहां पर जब चले गए इधर में प्रजाओं ने कहा कि रामचंद्र जी का अभिषेक हो, महाराज दर्शन देख बहुत अच्छा। वशिष्ठ से पूछा, उन लोगों ने सब ने कहा कि कल ही शुभ दिन है, कल ही हो। कैकेयी से परामर्श नहीं किया। उधर में दोनों लड़के वहां पर गए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा सा स्मरण है क्या राज किसको देना है, और कोई उसका साक्षी नहीं है, वो तो है उसके नाना जी ही केवल साक्षी है और ये कैकेयी है। इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से हो जाए, बच्चे वहां पीछे देख लिया जाएगा जो कुछ होगा। इसलिए दूसरे दिन के लिए राज्य ऑफिस किया। समुद्र से और चारों तरफ से पानी आया और यज्ञ इत्यादि की विधि, उनको राज्य ऑफिस की तैयारी हो गई। इतने में मंथरा ने रात की बात जाकर के कैकेयी से कहा, उसने अपने गले का हार उसको दे दिया, इतना शुभ समाचार बतलाया, मैं तो भरत से अधिक राम को प्यार करती हूं। उसने कहा कि तुम समझती नहीं, आज तुम जिसको तुमको इतना सम्मान है कल नहीं रहेगा, राम राजा होगा, उसकी मैया होगी राजमाता और उसकी स्त्री होगी राजरानी, और तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम राजा के नौकर की मैया बनेगी। इस तरह से बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। अंत में उनके दो बार याद थे देवाश्रम संग्राम का। बस भक्त आई और महाराज दशरथ से कहा हमको दो बार चाहिए। क्या बार चाहिए? खुशखबरी सुनाने के लिए महाराज दशरथ वहां गए। उन्हें कहा हमको दो बार चाहिए, प्रथम बार से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम के लिए 14 बार वनवास। बहुत समझाया नहीं मानी, अंत में राम को संवाद गया। राम वहां पर आए और उन्होंने पिताजी के आदेश से पिताजी को कहा अच्छा हम बनने जा रहे हैं। कैकेयी ने स्वयं उनके वनवासी वेश बनाए सीता जी के लिए, वनवास के लिए उन्होंने कहा। सीता जी भी और राम भी उनके साथ में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। कैकेयी ने उनके लिए जैसे संतों के वेश होते हैं भगवा वस्त्र इत्यादि वैसे सब प्रस्तुत किए। राम ने बड़े आनंद के साथ में पहन लिया। लक्ष्मण जी के लिए भी आदेश दिया, सीता जी के देने के समय में चुप हो गए। वशिष्ठ ने कहा कुलंदारिणी अपने पति को मारने वाली तुम उसकी लड़की हो, कहके देश के रानी की, तुम्हारी मैया भी ऐसे ही थी, तुम उसी की पुत्री हो तो तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारी मैया ऐसी थी, राजा ने एक दिन स्वप्न देखा और सपने में ऐसा भयंकर था और सपने में आदेश हुआ कि ये स्वप्न को किसी से मत कहना नहीं तो तुम मारा जाएगा। दूसरे दिन वो बड़े कुछ चिंतित थे। रानी ने पूछा जब आप चिंतित क्यों हैं? एक स्वप्न देखा था, खुशी के लिए मना है बनाने बतलाने के लिए, तुम हमसे कहो बतलाओ। वो जीत पकड़ लिया, तुम मरो चाहे बाचो हमको बतलाओ। राजा ने कहा ये बड़ी मुश्किल, मैं मर जाऊं तभी उसको बतलाना पड़ेगा। अपने पुरोहित से पूछा, पुरोहित ने खबरदार मत बतलाइए, इसके साथ से सिर के बाल कटवा दीजिए और मुख को कालिख लगा दीजिए और गधे पर उल्टा बैठा दीजिए और इसको वो लाल लाल फूल कौन सा होता है ना देवी का, वो सब उसको पहना करके और राज से बाहर कर दीजिए, नहीं मानती है तो। उन्होंने ऐसा ही किया, जब नहीं मानी किसी तरह से कहा सुनो नहीं मानती है तो अरे गधा ले आओ इसका सिर मुंडन करो। मुंडन कर दिया गया और लगा दिया, लपेट दिया काली और हाड़ी चढ़ा दी गई रंग करके और रख करके हाड़ी बना करके गधे पर बना करके राज से बाहर कर, तुम उसी की लड़की हो, तुम मान नहीं रही हो, अभी मान जाओ नहीं तो खैर नहीं तो पीछे न जाने क्या होगा। किंतु वो मानी नहीं। महाराज दशरथ भी ऐसे थे। अंत में सीता जी ने बलकल तो ले लिए, अब राम के तरफ में देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से उस वस्त्र के ऊपर में वो बलकल लेकर के लगा दिया और तीनों निकल गए। राज्य सुना रह गया, सारी प्रजाएं सब कुछ उनके साथ में चले। पहला दिन उन्होंने पड़ाव किया वो एक नदी के किनारे, नहीं वहीं पर राजा था निषाद राज थे, राम के परम भक्त थे। रात में वहीं पर ठहरे, सारी सेनाएं और सब लोग पाने रथ पर चढ़ करके गए थे। जब आधी रात हुई राम ने उनको बुलाया निषाद राज को, अभी गंगा में हमको पार करके उस पार में पहुंचाओ। प्रयाग के सामने सब लोग सो रहे थे, जोगमाया सबको सुला दिया और आधी रात के समय में राम लक्ष्मण सीता गंगा को पार कर, जब गांव में पैर उठाया चढ़ने के लिए तो केवट ने कहा भाई पहले मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, सुनते हैं कि आप बड़े आपके चरणों की धूली में कुछ ऐसे गुण हैं कि पत्थर को भी वो बना देती है स्त्री, तो हमारी नौका जब ही बन जाएगी स्त्री तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे, मैं कदापि ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तो आपके चरण धो करके अच्छी तरह से एक धूली का कण नहीं रहे तब छोड़ूंगा। सीता और राम लक्ष्मण तीनों मुस्कुरा दिए, देखो कितना चलाक है, चलाकी के साथ में ये चरणों की धूली को ले रहा है। रामचंद्र जी ने पैर बाहर कर दिए और उसने चरण को मल मल करके धो करके अपने वंश के साथ में पान किया। इसके बाद में नौका में बैठाया, जब नौका में बैठ करके पार होकर गंगा को पार करके प्रयाग की तरफ में आए भरद्वाज ऋषि के आश्रम के सामने, तो सीता जी की तरफ राम ने देखा, हमारे पास में तो कुछ है नहीं किंतु तुम्हारे अंगों में अलंकार है इसलिए ये खाली हाथ ही आएगा, तो केवट को उतराई देने लगी। सीता जी अपनी अंगुरी उठाई और उनको देने लगी। केवट कहता है कि देखो हम लोग दोनों बिरादरी के हैं, सजातीय हैं, तुम भी पार करने वाले हो, हम भी पार करने वाले हैं। मैं छोटी छोटी नदियों को पार कराता हूं, तुम भाव सागर को पार कराने वाले हो, इसलिए भाई मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, तुम भी जब हम भाव सागर में जाएंगे पार में तब हमको तुम पार कर देना, बस यही रही हमारी। देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, कुछ नहीं लिया। इसके बाद में वो चित्रकूट में पहुंचे, चित्रकूट में वाल्मीकि जी से पहले यहां पर मिले थे, इसके बाद में चित्रकूट में पहुंचे, वहां पर अत्रि ऋषि थी, अनुसुईया जी वहां पर थी, कुछ दिन वहीं पर रहे। इधर में भरत जी वहां से, और वहां पर जब निवास करने लगे भरत जी और शत्रुघ्न जी कुंज निहाल में, जिस दिन राम वन में जा रहे हैं और महाराज भरत ये दशरथ जी हा राम तीसरी बार नहीं निकला, बस प्राण भी छोड़ दिया राम के गिरह में। वहां से अब यहां से वशिष्ठ जी ने राजदूत भेजे, राजदूत कहा जी अभी आज चुरत चलना है। लोका जी क्या हो गया जी, क्यों? उनकी बाई आंख खड़कने लगी भरत जी की, कहा कोई अशुभ बात हुई है, बतलाता क्यों नहीं जी? क्यों? इसलिए महाराज ने बतला, तो वो बुला रहे हैं आपकी मैया के घर में बैठे हैं, ये बुला रहे, बस यही जानता हूं और मुझको कोई पता नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं बाहर से बाहर आया हूं। जब चले कौवे काव काव करने लगे, गधे रोने लगे, आकाश में उल्कापात होने लगा, पृथ्वी डोलने लग गई। अयोध्या में जब आए तो देखा अयोध्या में धूल उड़ रही है सुनसान, वो एक विधवा की भांति रूप धारण किया, जो सतवा की भांति में सब समय शोभायमान होती थी, वहां पर धूल उड़ रही। उनका आवागमन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आया। जब वो कहीं बाहर जाते थे तो लाखों लोग उनके पीछे जाते थे, आज उनका स्वागत करने के लिए नहीं आया। कुछ क्या बात हो गई? पिताजी दौड़ करके हमको आशीर्वाद देने आते, राम भैया आते थे, लक्ष्मण जी आते थे, ये लोग नहीं आए। कुछ शंका हुई, रथ से उतर गए, ये कहां चले? उन्होंने सोचा मैया के घर में होंगे। लोगों ने बतलाया, कोई सी ने बतलाया, चुपके से बतला करके वो हट गए, कोई भी अभी वादन नहीं किया। मैया के घर में गए, वहां जाकर के देखा मैया के तो सिर पर सिंदूर नहीं। क्या हो गया मैया, क्या हो गया? तो बेटा तेरे लिए सब कुछ हुआ। क्या मेरे लिए हुआ? तेरे लिए राज्य के लिए मैंने महाराज दशरथ से मांगा यह राज्य 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी को वनवास दिया। अरे अरे हमारा राज्य मांग लेती, राम को वनवास क्यों दिया? मैं ऐसा राज्य नहीं लेता, तू आज से मेरी मैया नहीं, अब जीवन भर में कदाप तुम पुत्र अभिमान मत रखना, आज से मैया का संबंध मैंने तोड़ दिया। रामचंद्र जी नहीं बिगड़ते तो आज तुझे गोटी गोटी काट करके खत्म कर दिया होता, इसलिए राम के डर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब जाओ यहां से निकलो। शत्रुघ्न जी ने देखा वो मंथरा जी सोने के आभूषण जो कई कई ने दिए हैं वो पहन करके आई है, और आगे आगे हाथ से सोने में कंगन लगा दिया है, नहीं तो ऐसे दिखला रही है, उधर चलो मैंने दिखला रही हमको कितना आभूषण। महिलाओं का ये शौक होता है ना, और चोर पीछे लगे रहते हैं, बस चोर क्या करते देख लेते हैं, और जहां यहां किया ना बस यहीं से निकाल लिया, और कपड़े हटा करके थोड़ा सा दिखला रही है हार इत्यादि, तो क्या कर दिया, बकोट लिया, उसके साथ साथ में जो कुछ है वो सब ले लिया। इसलिए तीर्थ यात्रा में आओ, हरि कथा में आओ तो कैसे आओ, दीन ही निष्किंचन होकर के, कोई न सिकर खेचे न कुछ। इस तरह से मैं कहां चल बोल रहा था, मंथरा दिखा रही है, मंथरा दिखा रहे शत्रुघ्न ने देखा, अरे ये तो आभूषण दिख रहा है, आज तो बहुत बनी ठनी हुई है, कुब्जा है ये, बस एक लात मारा बड़ी जोर से, वो तो एकदम गिर गई, मुख में मिट्टी आ गया, मरी रे बचाओ रे बचाओ रे। इतने में भरत जी आकर के कहा अरे भाई स्त्री है हाथ मत छोड़ो, तो भैया नहीं तो कहीं बिगड़ जाएंगे, इसलिए इसको मारो मत, प्राण से मत मारो। उन्होंने 2-4 और लगा दिए, भरत जी ने किसी प्रकार से छुड़ा दिया। इसके बाद में भरत जी अपनी सारी सेनाओं को लेकर के, सारी माताओं को लेकर के चले, सुमित्रा जी और कई कई को लिया, अपनी मैया को छोड़ दिया क्योंकि संबंध नहीं। कई कई के चरणों में गिर पड़ी, कई कई कौशल्या जी के चरणों में बोली जैसे दीदी हमको भी ले चल, मैं बहुत दुखी हूं, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, इस पाप का जो मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ऐसा मांगा मेरी समझ में नहीं आया, तुम ले चलो हमको भी। उनको भी ले लिया, चित्रकूट में ये लोग पहुंचे। लक्ष्मण जी तम तम आए हुए हैं, धनुष बाण निकाला, चढ़ गए अशोक वृक्ष के पर। वहीं से देखा जी भरत जी आ रहा है, सारी सेनाएं हैं और सूर्य उसके रथ के ऊपर में ध्वजा पर चढ़े। ये सूर्य वंशियों का राजाओं का निशान है। मैं कहिए राम को और हमें मारने के लिए आ रहे हैं, निष्कंटक राज्य हो जाए, ये कैकेयी के तो बेटा है। राम कहन जी ऐसा अनर्थ मत करो, अभी देखो परीक्षा करने के बाद में जैसा, अभी थोड़ा सा शांत हो जाओ। उनके कहने से वो शांत हुए। इतने में भरत जी आकर के उनके चरणों में गिर गए। पहला उन्होंने कहा जी आप कृपा करके अब लौटिए। मैं कैसे लौटूं, उस दिन तो रहे, दूसरे दिन महाराज दशरथ का श्राद्ध इत्यादि जो था उन्होंने किया राम और लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने तो पहले कर रखा था। इसके बाद में बड़ी भारी सभा बैठी। कौशल्या के पास में भरत जी गए, मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बेटा क्या चाहता है? तू एक बार राम से कह दे जो अयोध्या लौट जाए, तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। बेटा मैं ये कैसे कह दूं जो राम लौट जाए, वो तो मर्यादा का एकदम वो पहाड़ है, वो तो कभी नहीं लौट सकता है। और मैं कैसे कहूं जो पिता की आज्ञा को तोड़ करके वो चला जाए। यदि अधर्म की कोई बात होती तो मैं उसको समझा देता, किंतु तो वो अपने धर्म पर खड़ा है, मैं कैसे कहूं। कहे मैया तुमने उसका पक्ष ले लिया, वही तुम्हारा प्यारा हो गया। मैं तो समझता था कि मैं तुम मेरी मैया हो और तुमने भी हमको तिरस्कार कर दिया। कहे अच्छा तो ऐसा करो वशिष्ठ जी के पास में जाओ, गुरु जी की बात का उल्लंघन नहीं कर। वशिष्ठ जी के पास में गए, उनसे कहा, उन्होंने कहा जी मैं कैसे कह दूंगी राम लौट जाए, मेरे लिए कह दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कहिए एक बात करो, तुम उनको उनके पास में जाओ, रामचंद्र जी की जो सास हैं सुनैना जी के पास, और उनसे कहो जो राजा जनक से वो कहें वो कोई कोई ऐसी बात कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के अपने पति से कहा ये भरत जी ऐसा चाहता है, आप उसकी रक्षा करें, नहीं तो वो मर जाएगा, वो छोटा बच्चा है। किसी प्रकार से राम यदि लौट जाए तो सीता भी लौट जाएगी, हम लोग भी बड़े सुखी हो जाएंगे, वो तो अपना स्वार्थ देख रही थी। बस वशिष्ठ जी ने कहा इसकी मीमांसा राम ही ये करेंगे, महाराज जनक करेंगे। बड़ी भारी सभा बैठी, ऋषि मुनि शास्त्र लोग हजारों लोग बैठे। एक तरफ में राम और लक्ष्मण जी बैठे, दूसरी तरफ में भरत जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, राजमाताएं बैठी, वशिष्ठ जी बैठे, सभी पूर्ण। जब सभा हो गई तो उन्होंने अपने गुरु को जनक जी ने प्रणाम किया, कहा जी देखो हमको मध्यस्थ बना रखे हैं वशिष्ठ जी, हमारी राय जो होगी जो फैसला होगा वो दोनों पक्ष मानेगा कि नहीं मानेगा, पहले मैं ये सुनना चाहता हूं। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा हमारी राय आप मान्य होगी कि नहीं आपके लिए फैसला, कहे मैं सिर पर अपना आपके फैसले को रखूंगा। भरत जी से और शत्रुघ्न जी से पूछा, भरत जी ने कहा जी आप जो कुछ आदेश देंगे जो कुछ फैसला देंगे हमें मान्य होगा। तब उन्होंने विचार करके कह रहे हैं देखो भाई बात ऐसी है, बहुत गंभीर मामला है, मेरी तो ये राय है, मैं सब प्रकार से विचार किया, रात भर विचार करता रहा, विचार करके मैं इस निर्णय पर आया हूं कि भरत चाहता है कि अयोध्या में चले और राम चाहते हैं कि पिता चाहता हम आदेश।